लर्नर्स, हेलो लर्नर्स, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स, यानी मैनेजमेंट के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या है? आपने ज़रूर ये वर्ड सुना होगा कि मैनेजमेंट, या फिर आपने ये सुना होगा कि लोग चीज़ें मैनेज करते हैं। तो एक्चुअली मैनेजमेंट वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, ये भी बहुत जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम किसी एक हाउसवाइफ को ही देखें तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारा काम जो है मैनेज करती हैं, वो कि घर के क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितना किस चीज़ पे खर्च करना है, घर को कैसे सजाना है, क्या क्या फर्नीचर आइटम्स घर में होने चाहिए, किस टाइप का फूड बनाना है, किस टाइम पे सर्व करना है, कब कपड़े धोने हैं, कब घर का काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो एक हाउसवाइफ होती है या जो घर पे लेडीज होती हैं वो ये इन सब कामों को मैनेज करके चलती हैं। तो कई जगह हम जबकि ये भी देखते हैं कि उनकी मल्टीटास्किंग भी होती है, कि बहुत मतलब वो बहुत सारा काम जो है कभी बहुत सारा काम जो है वो करती हैं, बहुत चाहे वो घर पे हो या फिर बाजार जाने का काम हो, या अगर बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे काम जो हैं वो एक हाउसवाइफ मैनेज करती हैं। तो जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को बिल्कुल ठीक से समझ में आना चाहिए कि मैनेज करने का या मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। सिमिलरली अगर आपने किसी स्कूल टीचर को देखा हो, अगर आप कभी स्कूल गए हो या फिर आपके आसपास कोई टीचर रहती हो या बच्चे स्कूल जाते हो, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि टीचर्स के पास भी बहुत सारा काम रहता है। जैसे उनको रिपोर्ट कार्ड भी बनाने होते हैं, क्लास में भी अपना लेक्चर देना होता है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को कुछ स्पेसिफिक एक काम दे दिया जाता है। मान लीजिए कि टीचर्स को बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना है, तो फिर टीचर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ उनको डिसाइड करनी होती कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने स्टूडेंट्स को जाना है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पैसा उनको कब कलेक्ट करना है बच्चों से। तो और इसके साथ साथ और भी चीज़ों की जानकारी ज़रूरी होती है कि जैसे बच्चे कब तक वापस आएंगे, उनको कैसे वो स्कूल तक आएंगे, कैसे उन्हें घर वापस पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए हम देखते हैं कि टीचर्स कई बार ड्यूटीज़ भी असाइन करती हैं दूसरे बच्चों को कि वो ये काम कर पाएं। मे बी अगर, या कई बार होता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ में या स्कूल में भी वो और लोगों से हेल्प लेते हैं कि वो इन कामों के लिए टीचर को असिस्ट करें। जैसे मे बी अगर कोई बस का अरेंजमेंट करना है पिकनिक के लिए, या फिर बच्चों से पैसे कलेक्ट करने हैं, या फूड का अरेंजमेंट करना है पिकनिक के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है हम देखते हैं कि टीचर करती हैं जब ज़रूरत पड़ती है। ये एक एग्जांपल है स्कूल पिकनिक का। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्कूल में अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो भी हम देखते हैं कि टीचर्स बहुत सारे रोल्स और टास्क करती हैं और सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि खाली ऑफिस में होता है, या मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ है जो खाली प्रोफेशनल है। मैनेजमेंट हर जगह पर हम देखते हैं कि होती है। और जब हम देखते हैं कि किसी की बहुत चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या फिर उनके काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, या वो ढूंढ रहे हैं ये कहाँ रखा था, वो कहाँ रखा था, मेरा ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो हम कई बार ये वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये बहुत अनमैनेज्ड हैं। तो मैनेज्ड होने का मतलब जो है कि हम अपने कामों को सही तरीके से और इस तरह से कर सकें कि सब काम हमारा इफेक्टिवली पूरा हो पाए।
जी,
तो इसके बाद मैनेजमेंट की जब हम मीनिंग की बात करते हैं, जब हम प्रोफेशनल टर्म्स में मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट से तात्पर्य है कि किस तरह से काम किया जाए कि जितने भी इनपुट्स हमें अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके हम जो डिज़ायर्ड आउटपुट हैं उसको दे पाएँ, और कितनी इस काम में हमारी एफिशिएंसी अच्छी है, कितने अच्छे इफेक्टिवली, मतलब कितने अच्छे तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हमें ह्यूमन पावर अवेलेबल है, जो हमारे साथ में लोग काम करते हैं, या जितना रुपया हमारे पास है, या जो मशीन मटीरियल या जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, हम उनको किस तरह से इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि काफी सारी एक्टिविटीज हैं जिनको हम इनको हमने काफी एक्टिविटीज में बांटा है, जिसको कई बार हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। हालांकि बुक में जब आप सीनियर सेकेंडरी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप हर एक फंक्शन पे आपके लिए एक अलग चैप्टर है और आप बहुत ही विस्तार से हर जो ये फंक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग पे भी चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, हर एक पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। आप बहुत डिटेल में हर एक को पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर जो है स्टार्टिंग चैप्टर है और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिक्स के बारे में आपको पता चलेगा, तो इस चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ज़रूरत है, किस लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, ये भी हमारे लर्नर्स के लिए, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि किस किस तरह से हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए, मतलब हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो, यही इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है होता है। तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कैसे कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने मैक्सिमम आउटपुट्स जो हैं वो दे सकें, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे टाइम है, मनी है, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कैपिटल और लेबर है, तो इसको हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है कि जो भी ओनर्स हैं उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर उन्हें फेयर रिटर्न मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू क्रिएट गुडविल। तो बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट का ये भी एक एम होता है कि किस तरह से वो जो फर्म है उसकी रेप्यूटेशन जो है, उसकी गुडविल जो है उसको बढ़ाए, किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करे जिससे फर्म की रेप्यूटेशन बढ़े, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज करना, उनको एडवर्टाइज करना, उनको रीजनेबल प्राइसेस पे बेचना और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को अवेलेबल करवा पाना। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो है जो चैलेंजेस है चेंजिंग एनवायरनमेंट के, उनको देखना। तो जो भी हमारे एंटरप्राइजेज हैं या जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं और जो चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से खुद को नहीं चेंज कर पाती हैं, उनके उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है। किसी ना किसी वजह से हमेशा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। मे बी कुछ मार्केट कंडीशंस बदल जाएं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल जाएं, कुछ फैशन ट्रेंड्स बदल जाएं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैनेजमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से खुद को बदल पाए। फिर अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट्स में। तो सबसे पहला तो ये कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल होती है। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि एक स्कूल टीचर के लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, एक हॉस्पिटल में हम काम करते हुए देखते हैं तो पूरा हॉस्पिटल हम देखते किस तरह से चलता है, तो हम कह पाते हैं कि इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इफ़ेक्टिवली हो रही हैं, सारी हॉस्पिटल की जो गतिविधियाँ हैं वो सुचारू रूप से पूरी हो रही हैं, तो हम कह पाते हैं कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। वो चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल हो और या फिर बड़ा हो, हर किसी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट की, हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो जो अगली विशेषता है वो है मैनेजमेंट इज़ गोल डायरेक्टेड। तो मैनेजमेंट का एक गोल भी होता है, जैसे गोल मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का भी हो सकता है, या फिर कस्टमर्स को सस्ते गुड्स दिलाने का भी हो सकता है, या फिर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हमेशा एक एम होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स हैं वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो जितने हम गोल्स अचीव कर पाते हैं हम कह पाते हैं कि हमारा मैनेजमेंट उतना सक्सेसफुल है, क्योंकि हम अपने मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट विशेषता की हम बात कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हम कल तक तो अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे और आज से नहीं करेंगे या कुछ टाइम के लिए करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो तब तक एग्जिस्ट करना चाहिए जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी एक्टिविटी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। तो इसलिए सारी एक्टिविटीज जो भी हैं, जो बिजनेस में भी होती हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल है, स्टोरेज है, ऑपरेशन है, हर किसी के लिए मैनेजमेंट की जरूरत जो है वो पड़ती है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ के मैनेज करेगा। मैनेजमेंट का एक अर्थ ये भी है कि कैसे सब आपस में इंटीग्रेट करेंगे। मीन्स कि जैसे लोग हैं, मशीन्स हैं, मटीरियल है, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कैसे वो सब एक साथ आए और कैसे इन सब चीजों को आपस में मिलाकर काम हो। तो जब हम ये चीजें, ये एफर्ट्स हम इन चीजों में जब अपना डालते हैं और हम इन एफर्ट्स को डालने के बाद जो गोल्स हैं उनको अगर हम सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का अर्थ होता है जो चीज हमें दिखती नहीं है या फिर जिसको हम छू नहीं सकते। तो मैनेजमेंट हम कहते हैं कि वो इनटेंजिबल है, वो कोई ऐसे टेबल या कोई पिक्चर की तरह नहीं है कि जिसको हम दिखा दें और हम कहें कि ये मैनेजमेंट है। वो एक फीलिंग है, एक अनसीन फोर्स है जो हमें फील तो होती है लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि अगर हम किसी स्कूल विजिट करते हैं या किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं या कहीं बैंक में विजिट करते हैं तो हम देख कर वहाँ का जो माहौल है उसको जब हम थोड़ी देर देखते हैं उसके बाद हम अपनी फीलिंग्स जो है वो हमें फीलिंग आती है कि यहाँ का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक फोर्स की तरह होता है, एक फीलिंग की तरह होता है। हालांकि कई बार पिक्चर में दिखाने की कोशिश जरूर की जाती है कि बच्चे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं और सब जगह जगह अपना काम हो रहा है। एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पे प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो अपनी ऑफिस डेस्क पे हैं, तो ऐसा देखने से लगता है कि हाँ एक अच्छे मैनेजमेंट की पिक्चर है। बट रियलिटी में मैनेजमेंट को हम पिक्चर में कैद नहीं कर सकते। मैनेजमेंट एक फीलिंग है जिसको हम देखने से ज्यादा हम उसको महसूस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। तो हम देखते हैं कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो ज्यादातर हर एक फील्ड ऑफ स्टडी से हमें मिलते हैं। हम इंजीनियरिंग से भी देखते हैं कि हमारे पास में टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इकोनॉमिक्स से भी हैं, सोशियोलॉजी से भी हैं, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, हर जगह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी केयर भी करनी है कि उनको एक जो सेटिस्फैक्शन है जॉब से वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जो मैनेजेरियल एक्शंस हैं वो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेस से कनेक्टेड हैं। उसके बाद जो एक और आखिरी विशेषता जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। मतलब मैनेजमेंट एक सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम क्लास में भी देखते हैं तो अगर हम टीचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं टीचर एक अच्छी मैनेजर है क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई टेलर फिट मेथड होता है कि ये करना है तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा या इससे सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि हर बार हम कहते हैं कि सिचुएशन डिफरेंट होती है, उसी तरह से हर बार सिचुएशन को टैकल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो सिचुएशन होती है, जिस तरह से सिचुएशनल होती है, जिस तरह से सिचुएशन होती है उसके रिलेटिव होती है, और हर सिचुएशन में आप सेम टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे है. मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो है कि अटेनमेंट ऑफ गोल्स के लिए, कि हम किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उसी तरह से हर एम्प्लॉय के भी अपने गोल्स होते हैं. क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव करना चाहता है, फिर होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. हर एक डिपार्टमेंट अपने गोल बनाता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट क्या अचीव करना चाहता है. फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो सब यूनिट्स होते हैं उनके अपने गोल्स होते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं फिर ये गोल्स आके इंडिविजुअल गोल्स पे आ जाते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसको कौन से गोल्स अचीव करने की जरूरत है. तो इसके बाद स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इसी चीज पे काम करती है कि किस तरह से जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके, मींस उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके किस तरह से एक्टिविटीज और ऑपरेशंस को, सब चीजों को जो हमने बात करी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या मशीन्स हैं, हर चीज का इंटीग्रेशन करके हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकते हैं. इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी और उनके जो इंडिविजुअल्स काम करने वाले हैं उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करते हुए. फिर जो नेक्स्ट है वो है चेंज एंड डेवलपमेंट. तो बहुत जरूरी है जो मैनेजमेंट है वो अपने आप को जो चेंजेस हैं एनवायरमेंट में, या फिर जो आगे को कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो अनफोर्सीन है, जो हमें नहीं पता कि कल को ये चेंज आने वाला है, उसके लिए भी हम खुद को तैयार रखें. जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि 2016 की बात है कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो एकदम से सारी करेंसी जो है वो बंद हो गई थी. तो ऑर्गेनाइजेशन को इन तरह तरीकों की चीज, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए. मतलब ये तो एक सिचुएशन है, ऐसी और भी सिचुएशंस हो सकती हैं. और जैसा कि पहले भी कहा कि हर वक्त सिचुएशन अलग होगी तो हर वक्त टैकल करने का तरीका भी अलग होगा. उसके बाद जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं, तो किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग, इन सब को करते हुए मैनेजमेंट किस तरह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को यूटिलाइज कर सकता है. तो अब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं. तो इसमें बहुत से इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, या फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट. तो हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे, उससे लर्नर्स को अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है. क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या वो डिसिप्लिन है, या फिर क्या वो ग्रुप है, या फिर वो साइंस है या आर्ट है. तो जब हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, तो जब हम एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड हैं. पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं. तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं. इसलिए ये एक प्रोसेस की तरह चलता है कि पहले जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे, और फिर जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव करेंगे. तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस की तरह है. फिर जो नेक्स्ट जिस पे हम बात करें वो है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. क्योंकि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, और बहुत सारे सालों में ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो गया है. पहले तो मैनेजमेंट एक स्किल हुआ करता था, कि मतलब कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कि मतलब हाँ इनको मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं. लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि इसमें इतनी प्रैक्टिस हुई और इतनी रिसर्च हुई कि ये इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज जो है वो आ गई इसके अंतर्गत, कि हमने इसको एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट जो है ये मैनेजमेंट इवॉल्व हो पाया. तो अब जो है हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हो चुका है. मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स और अपने प्रैक्टिसेस हैं, और अब ये एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह, जिसमें इनकी अपनी टेक्निक्स हैं, अपनी अप्रोचेस हैं, अवेलेबल रहता है. बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो हम जानते हैं, जहाँ अच्छे मैनेजमेंट कोर्सेज जो हैं वो बच्चे करते हैं. तो इसलिए मैनेजमेंट, हम सभी जानते हैं कि अब मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह इवॉल्व हो चुका है. फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप. जब हम नॉर्मली एक बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं और वहाँ ये एक मैनेजमेंट की फीलिंग आती है. तो जब भी हम मैनेजमेंट को रेफर करते हैं नॉर्मली हमारा जो रेफरेंस होता है ग्रुप ऑफ मैनेजर्स पे होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जो वेरियस लेवल पे होते हैं. मे बी उसमें कुछ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हों या कुछ लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हों और जो अपने फंक्शंस जो हैं वो जॉइंटली करते हैं एज अ ग्रुप वो फंक्शन करते हैं. तो इसलिए मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी कहा गया है. फिर जो नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस एज एन आर्ट. तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर मैनेजमेंट एक आर्ट है? मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कॉज और इफेक्ट जो है उसके बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की गई है. क्योंकि मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस उसका हो चुका है, क्रिटिकल इवेल्युएशन है और लॉजिकल कंसिस्टेंसी होने की वजह से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है. क्योंकि इससे जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके फिनोमेना और जो इसकी दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ. तो जब हमें ये क्यों का उत्तर मिलता है तो हम कह पाते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है. उसके बाद मैनेजमेंट एक आर्ट इसलिए है क्योंकि जब हम हमेशा से बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक स्किल की तरह है और जब हम स्किल की बात करते हैं तो उसमें ये भी एक बात आती है कि स्किल हमेशा एक तरह का नहीं हो सकता या हम किसी भी स्किल को ये नहीं कह सकते कि ये एक बेस्ट स्किल है. जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा पेंटिंग भी करता है तो कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं हो सकती कि वो बेस्ट पेंटिंग हो. जरूर उससे अच्छी भी कोई पेंटिंग बना सकता है या फिर कुछ दो पेंटिंग इतनी अच्छी भी हो सकती है कि आप उन दोनों में डिसाइड ना कर पाए कि बेस्ट पेंटिंग कौन सी है. तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है. और इससे मैनेजमेंट से हम ये भी देखते हैं, हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी काम करने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके एक ही काम को करने के भी हो सकते हैं. तो मैनेजमेंट में ये दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, साइंस की भी क्वालिटीज़ हैं और आर्ट की भी क्वालिटीज़ हैं. इसलिए मैनेजमेंट को ना तो हम साइंस में कैटेगराइज करते हैं और ना ही हम उसको आर्ट में कैटेगराइज करते हैं. हम उसको दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं कि उसमें आर्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साइंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है. फिर जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, उसका एक फॉर्मल मेथड है जिससे हम उस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, कि अब हमारे पास फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज कराते हैं, तो हाँ इसको एक्वायर करने का एक फॉर्मल तरीका भी है और हाँ इसके लिए एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट भी है जो डिसाइडेड है. तो जब भी हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो ये उनके प्रीरिक्विजिट्स होते हैं कि उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक्वायर करने का एक फॉर्मल तरीका होना चाहिए और एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए. तो क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में हैं और ऑक्यूपेशन अर्न करने के लिए भी, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए भी मैनेजमेंट एक तरीका है. तो क्योंकि इसमें सब क्वालिटीज हैं इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी मानते हैं. उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे. तो जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के ब्रॉडली 3 लेवल्स होते हैं जो कि हम सभी जानते हैं या सुनते हैं. जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. तो जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मतलब है जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी में या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनका कि फंक्शन जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनको डिफाइन करना है और फिर पॉलिसीज को बनाना है. उसके बाद हम देखते हैं कि मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है वो होती है जिसमें कि डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं. तो इनका काम है कि वो जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये डिफाइन करें और जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करें कि किस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव किया जा सकता है. उसके बाद जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं या जो फोरमैन होते हैं, जो कि काम को करते हैं और सुपरवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद एक वर्कर लेवल होता है जो काम को करते हैं. तो इसलिए ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स थे विद फंक्शंस थे कि क्या कौन कौन से लेवल्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. इसके बाद भी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर हम उसको एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट भी कह रहे हैं या फिर हम उसको प्रोसेस भी कह रहे हैं कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग है. तो ये सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हैं. तो प्लानिंग सबसे पहले जब हम कोई काम करते हैं, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है वो है प्लानिंग. अगर हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें सुबह उठकर तैयार भी होना होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में प्लान कर लेते हैं कि सुबह हमें क्या बनाना है, क्या पहनना है, और भी हमें जो जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ लेके जानी है. हो सकता है हम रात को शायद उसे ना निकालें, या कई बार निकाल के भी रख लेते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में ज़रूर रखते हैं, या फिर कई बार रिमाइंडर भी लगा लेते हैं मोबाइल में अपने कि हमें ये चीज़ें सुबह हमारे पास में होनी चाहिए. तो सबसे पहला जो स्टेप जो है हमारे दिमाग में आता है वो है प्लानिंग, कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है कि गोल्स को सिलेक्ट करना, कि हमें क्या करना है. जब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्या कर रहा है, उसके बाद ही हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि क्या करना है, फिर उसके बाद कब करना है और कैसे करना है. तो इसके बाद हम एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से ये काम को करेंगे. इसमें ये भी है कि हम कुछ चीज़ें फोरकास्ट करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम टारगेट रखते हैं, या फिर कई बार हम पॉलिसीज या फिर जो शेड्यूल होता है एक्शन, जो शेड्यूल होता है उसको भी हम डेवलप करते हैं ये सब करने के लिए. उसके बाद प्लानिंग में एक चीज़ ज़रूरी भी है कि हमें डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, कि डिसीजन मेकिंग की क्या करना है और कैसे करना है और कौन करेगा और कहाँ पर होगा और हमें ये सब हम क्यों कर रहे हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पार्ट एसेंशियल पार्ट होती हैं, प्लानिंग का एसेंशियल पार्ट होती हैं, जिसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो गोल सेटिंग होता है और जो प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, मतलब कि क्या क्या हम एक्टिविटीज़ करेंगे उनको डिफाइन करना, वो होता है. जब हम एक बार डिफाइन कर पाते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, फिर सब हम उसमें टाइमलाइन भी दे पाते हैं कि अच्छा इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस जगह पर हम ये करेंगे, इस काम के लिए इन इन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तब हम एक ब्रॉडर पिक्चर दे पाते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजिंग. जब हम प्लान्स बना लेते हैं तो मैनेजमेंट का काम है कि वो इनके लिए एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करे, जो फिज़िकल रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत हैं उनको जुटाए, और फिर जो भी लोग हैं उनको ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि वो इस काम को स्मूथली करें. तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेक्स्ट पार्ट, या फिर हम फंक्शन भी कहते हैं, स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का अर्थ है कि लोगों को एम्प्लॉय करना, जिससे कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर सकें. तो जो ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का, वो सबसे पहले तो ये है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, कि आप सही जने को सही काम दे रहे हैं. जब हम कई बार हम देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो कई बार लोग हमें बताएंगे कि मैंने तो कभी ये किया नहीं है लेकिन मुझे ये काम दे दिया गया है. और हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उस काम, उस क्वालिफिकेशन या उस जो स्किल है उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन मे बी उनको पता ही ना हो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सन है जो ये चीज जानता है. तो इसलिए जो लोगों की कैपेबिलिटीज है, जो उनके स्किल्स हैं, उनको डिफाइन करना जरूरी है, और सही इंसान को सही जगह पे, मतलब सही इंसान का चयन सही काम के लिए, वो बहुत जरूरी है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करना कि वो काम किस तरह से करें, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, और जो भी कमियां हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना. बहुत कई बार इसको बहुत नेगेटिवली भी लिया जाता है, क्योंकि जब हम डायरेक्टिंग का सुनते हैं या सुपरवाइज करने का की बात सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कमियां निकालने पे आ जाता है. लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कमी निकालना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से जो कमी हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए ताकि कि उस तरह से जो वर्कर है उसको सुपरवाइज किया जा सके या उस कमी को पूरा किया जा सके या इस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सके कि वर्कर इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो अच्छी तरह से उस काम को कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। तो जब काम हो जाता है या काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम मिलाते हैं कि हमें क्या चाहिए था और क्या काम हो रहा है या हुआ है। तो जो हमें चाहिए उसके लिए हम कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, या अगर हम किसी भी कहीं पे भी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है तो वहां पे भी हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेट करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो ये होना चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है। डिविएशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड से थोड़ा कम हो, कुछ परसेंटेज वो डिसाइड कर ले तो उतना चल सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कंट्रोलिंग जो है उसका तात्पर्य है कि किस तरह से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी उसमें उसको हम कंपेयर करें और जो डिफरेंसेस हैं उनको हम नोट करें और जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको हम ले सकें, जिससे कि ये जो डिफिशियंसीज हैं इनको हम रिमूव कर सकें। उसके बाद एक और चीज है जिसकी हम मैनेजमेंट में बात करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को यहाँ तक कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। बार बार से ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम तभी इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं अगर जो एम्प्लॉयज हैं उनमें यूनिटी है और हार्मनी है, वो मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और वहां पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर दो वर्कर्स हैं वो आपस में बात नहीं करते हैं तो ठीक है, मे बी इंडिविजुअली शायद उनको कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ना देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके लिए काम करा जाए। इसलिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो या कोऑर्डिनेशन की कमी हो तो उससे बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी खराब चीजें होती हैं, जैसे कि कई बार ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, या मे बी कोई काम है जो उस पर्सन ने भी कर लिया है और दूसरे पर्सन ने भी कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो अब आपस में बात नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि काम दो बार हो चुका है
जी।
तो इसमें कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और अपर लेवल में कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो उतनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में भी होनी चाहिए और हर लेवल पे होनी चाहिए, मतलब कि वर्टिकल भी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए, मतलब सब एम्प्लॉयज भी एक दूसरे से बात करें और शेयर करें। कुछ चीज की जरूरत हो, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई जानकारी चाहता है जो इंस्टीट्यूशन के आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है तो आप जरूर उसकी मदद करें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी जो है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, वो जो है हर लेवल पे उसकी भी जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि आज या कल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आगे से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से सारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, हर कोई इंटर रिलेटेड है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, हम ऑलरेडी इतनी कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस पे और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या हो सकता है उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन जो है वो जो वर्कर्स हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है और उससे काम में ओवरलैपिंग नहीं होती या वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बने रहते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, और इससे हमारा जो वेस्ट टाइम है वो रिड्यूस होता है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी और मोरल है एम्प्लॉयज का वो भी अच्छा होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम ये जान लें कि वो कॉज और इफेक्ट जो होता है रिलेशनशिप के बीच में उसको एस्टेब्लिश करते हैं और एक गाइड की तरह एक्ट करते हैं कि किस तरह से काम को होना चाहिए. तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो भी यूनिवर्सल होते हैं. जैसा कि हम कहते हैं कि हर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो एक बिजनेस एंटरप्राइज हो, हर एक के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सेम होते हैं. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल भी होते हैं. चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स हैं उनको होना चाहिए. जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि एक जो प्रिंसिपल है वो हर सिचुएशन में वैसा ही रहेगा. कभी कभी हो सकता है कि हमें उसको चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट भी करना पड़े. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इन ह्यूमन बिहेवियर को वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से काम करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे पाएं, और इसको किस तरह से करना है इसमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल होता है. फिर जैसा कि पहले भी बताया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसको भी ये इफेक्ट करते हैं.